Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Iti Rupasya Rupi Vetirekena Abhavat. Rupasya, Rupi, Betirekeda, Avavat. Rupi ke alava, Rupaka, koi astitva nahi rehta. Rupasya, Rupi, Betiriktasya, Avavat. Koi bhi Rup hai. Woh Rupi ke alag hokar, Rupi se alag hokar, uska astitva nahi rehta. Guna, गुणी से अलग नहीं रह सकता. इसलिए नैयायिक लोग इस बात पर पक्के हैं. नैयायिक लोग, तार्किक लोग इस बात पर पक्के हैं. गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है. गुण अपने गुणी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता है. तो वही बात आ गया यहां. वही बात शंकराचार्य जी ने कह दिया ना. हाँ, रूप रूपी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता. रूप गुण है, रूपी गुणी है. समझ गए कि नहीं? जो रूप जहां दिख रहा है, जहां दिख रहा है, हाँ, जिस अधिष्ठान में जो रूप दिख रहा है, वो अधिष्ठान का नाम क्या हुआ? रूपी. और जो दिख रहा है रूप. आपके कमीज सफेद है तो सफेद क्या हुआ? रूप. कमीज क्या हुआ? रूपी. सफेद रूप कमीज से अलग होकर स्वतंत्र रूप में दिख सकता है कि नहीं है? तुम इसकी सफेदी को कमीज से अलग करके दिखा सकते हो? रूपी व्यतिरिक्त अभाव. और यदि रूप के बोध होता है तो रूपी में ही रूप का बोध होगा. रूप और रूपी का समवाय संबंध होता है. गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है. समवाय संबंध का अर्थ नित्य संबंध. नित्य संबंध इस अर्थ में क्योंकि रूपी से रूप को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए नित्य संबंध है. नहीं, देखो, सफेदी का प्रतिबिंब है ना. मान लो कमीज किसी मिरर के सामने, दर्पण के सामने तुमने रखा, तो दर्पण के आगे जो कमीज है वो सफेद है. सफेद रूप कमीज रूपी है ना. अब जो उसका प्रतिबिंब जो दर्पण दिखेगा, तो वो दर्पण में दिखने वाला सफेद रंग तुम ये कहना चाहते हो कि कमीज से तो अलग है ना. अरे बाबा, कमीज ही वहां रूपी बनकर प्रतिबिंबित हुआ है. वो प्रतिबिंबित कमीज को रूपी को क्या करोगे? क्या रूप प्रतिबिंबित रूपी को छोड़कर वहां प्रतिबिंबित हो रहा है? सफेद रूपी के सहित प्रतिबिंबित हो रहा है कि नहीं? तुम रूपी के अलग प्रतिबिंबित कर सकते हो, कमीज के अलग प्रतिबिंबित, कमीज से अलग प्रतिबिंबित रूप को दिखा सकते हो. वहां रूपी क्या हुआ है? रूप प्रतिबिंब है तो रूपी क्या है? वो भी प्रतिबिंब है. तुम हाँ,
जो रूपी है उससे अलग हो गया कि नहीं?
कहां हुआ? रूपी ही प्रतिबिंबित हो गया ना. रूप प्रतिबिंबित हो गया तो रूपी प्रतिबिंबित हुआ. कमीज यदि प्रतिबिंबित न होता तो केवल रूप प्रतिबिंबित हो सकता है.
कमीज का मैंने फोटो निकाला, कमीज को नष्ट कर दिया.
तो करते जाओ.
तो रूपी तो नष्ट हो गया, ये जो फोटो रह गया
किसका? हाँ, तो क्या हर्जा है? उस रूप में प्रतिबिंबित सफेदी जो दिख रहा है तुमको कमीज में ही दिख रहा है। कौन से कमीज में? फोटो में दिख रहा है वह रूपी फोटो, कमीज का फोटो है रूपी, क्योंकि सफेदी भी फोटो ही तो है। कैसी बात कर रहे हो? तो सहज की बात है, आसान से फॉर्मूला एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। कमीज के प्रतिबिंबों को छोड़कर प्रतिबिंबित रूप रहेगा वहां, प्रतिबिंबित कमीज को छोड़कर। बिंब कमीज को तुम नष्ट कर रहे हो, प्रतिबिंब कमीज को नष्ट करके दिखाओ। तुम ये क्यों नहीं सोचे कि कमीज का भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, और प्रतिबिंबित कमीज में ही प्रतिबिंबित रूप दिख रहा है। बिंब रूप नहीं, प्रतिबिंब रूप। बिंब कमीज में नहीं, प्रतिबिंब कमीज में। वहां प्रतिबिंबित कमीज क्योंकि रूपी प्रतिबिंबित, रूप प्रतिबिंबित है तो रूपी भी प्रतिबिंबित हो रहा है। तो रूपस्य रूपी व्यतिरेकेण अभाव, ये जो रूपी के व्यतिरिक्त रूप स्वतः अभाव हो जाता है। विश्वरूपत्वात् अपि अनंतम् चिद्दम् इत्यर्थ, विश्वरूप होने पर भी वह अनंत ही है, ये सिद्ध हो गया। ये शब्द यस्मात् अर्थ है, मूल मंत्र में ही जो शब्द आया है, ही का अर्थ जिससे, यस्मात् क्योंकि, इस अर्थ में ये शब्द प्रयोग हुआ है। जैसे च शब्द अवधारण में हुआ है, इसी तरह यहां ही शब्द, कहीं कहीं ही शब्द फिर अवधारण में प्रयोग होता है। ये ही हिंदी में ही शब्द अवधारण में होता है, संस्कृत में ये वह शब्द अवधारण में होता है, हिंदी में ही नहीं चलता है अवधारण में। तो यहां फिर ही का अर्थ क्या करोगे? तो ही शब्द यस्मात् जिससे, हेतु निश्चय, अवधारण माने निश्चय। यस्माद् विश्वरूप वैश्वरूप्यम लक्षणम परमात्मना इति एवं आदि भी ही आत्मनो विश्वरूपत्वम इत्यर्थ। यस्माद् माने जिससे, जिन हेतुओं से, रूप रूपी से अलग होकर नहीं रह सकता, और रूप रूपी से अलग होते ही वह मिथ्या हो जाता है। और सारा रूपी क्या है? जितने भी रूप हैं उनका रूपी क्या है? माया। रूपी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो निरूप है, ब्रह्म को तो निरूप कहा ही है, तो सारे रूप किसके हैं? माया के हैं। और सारे पदार्थ जो रूप हैं, विश्वरूप, विश्वरूप किसका है? माया का है, ब्रह्म का नहीं है। माया का विश्वरूप ब्रह्म से अलग होने पर ये विश्वरूप क्या रहेगा? तो रूप ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या हुआ? अनंत हो गया ब्रह्म, ये निरूप हो गया। वो माया गई तो सारा रूप गया, माया और रूप चले गए, तो वो माया और माया के रूप से ही ब्रह्म विश्वरूप कहलाया था, और जो माया और गई तो माया के रूप भी गए। तब रूप जाने पर भी उसके विश्व रूपता में कोई फर्क, क्योंकि वही विश्व रूप हुआ था। रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव, ये श्रुति से तो सिद्ध कर दिया है। यतः एव अनंतो विश्वरूप आत्मा एव, वही आत्मा विश्वरूप भी है अनंत भी है। आत्मा एव अकर्ता कर्तृत्वादि संसार धर्म रहित इत्यर्थ। कर्तृत्वादि किसके धर्म है? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार के धर्म है। संसार किसमें टिका हुआ है? माया में। माया मिथ्या है, तब कर्तृत्व माया से सिद्ध होने वाले कर्तृत्व भोक्तृत्व भी मिथ्या हो गया। तब असंग ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है ही नहीं, इसलिए वह क्या होगा? अकर्तृत्व, अकर्ता, अभोक्ता। तो कर्ता कर्तृत्व आदि संसार धर्म रहिता इत्यर्थ। कदा, कब, कदा एवं अनंतो, ये तीन संधि हैं इस वाक्य में। कदा एवं अनंतो विश्वरूप कर्तृद्वादि सकल संसार धर्म वर्जितो मुक्त पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्म रूपेणैव अवतिष्ठते। ब्रह्म है ना, ब्रह्म कदा कब अनंत रूप में अवतिष्ठते, विश्वरूपेण अवतिष्ठते, कर्तृद्वादि सकल संसार धर्म वर्जितो वर्जितत्वेन मुक्त पूर्णानंद अद्वितीयत्वेन अवतिष्ठते। वहां से ले आना, अन्वय करते जाना। पूर्णेव अवतिष्ठते, ये अवतिष्ठक सभी जग, सब जगह अन्वय कर लेना। कदा ब्रह्म पूर्णेव अवतिष्ठते, कदा ब्रह्म अनंत एव अवतिष्ठते, कदा ब्रह्म पूर्णानंदेन अवतिष्ठते, कवा कदा ब्रह्म मुक्तत्वेन अवतिष्ठते, जितने भी विशेषण है, विश्वरूपत्वेन अवतिष्ठते इति अत्राह। कब वह इस रूप में अवतिष्ठ होता है ब्रह्म? आह त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। कदा का साथ यदा, यदा के साथ कदा है ना, यथा के साथ तदा, तथा, तथा के साथ यथा। इसलिए यहां कदा ऊपर आया, यदा मूल श्रुति में यदा आया है, इसीलिए कदा तो वहां छुपा ही है, कदा व्यक्त नहीं है, लेकिन यदा जाना है वहां कदा है। श्रुति में कदा शब्द नहीं है, है ना, श्रुति में क्या है? यदा शब्द है। हाँ, ये देखो ना, त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म एतत्। अब यदा है तो कदा जरूर है, साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये व्याप्ति स्मरण कर लो। एक को देखा तो दूसरा भी वहीं छुपा है, यदा वहां छुपा हुआ है तो कदा जरूर है। इसलिए शंकराचार्य जी ने वो छुपे हुए कदा को खोज के निकाला। समझ गए कि नहीं? इसलिए कदा शब्द पहले प्रयोग कर दिया। कदा ब्रह्म विश्वरूपेण अवतिष्ठते, मुक्तत्वेन अवतिष्ठते, अनंतत्वेन अवतिष्ठते, अकर्तृत्वेन अवतिष्ठते, अवक्तृत्वेन अवतिष्ठते, यदा जब त्रयम्, त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। एतत् त्रयम् यदा ब्रह्म एव विन्दते तदा ब्रह्म मुक्तत्वेन अवतिष्ठते। तीनों वस्तु जब ब्रह्म अतिरिक्त भिन्न सत्ता वाला न देखकर एकमात्र ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त सत्ता के रूप में नहीं देखता, तब ब्रह्म अकर्तृत्वेन अवतिष्ठते। त्रयमेतद् ब्रह्ममेव, क्योंकि विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने एक नियम बना दिया है, सभी लोगों ने इसको माना है, नाधिष्ठानात् भिन्नता आरोपितस्य। ये सर्वमान्य सिद्धांत है, आरोपितस्य अधिष्ठानात् भिन्न न, आरोपित पदार्थ जिस अधिष्ठान में वो पदार्थ आरोपित हुए हैं अपने आरोप के अधिष्ठान के स्वरूप से वह भिन्न नहीं रह सकता, नाधिष्ठानात् भिन्नता आरोपितस्य। अधिष्ठान से भिन्न आरोपित पदार्थ का कोई स्वरूप ही नहीं रहता, कोई सत्ता ही नहीं रहता। तब क्या हुआ? ये तीनों चीज माया द्वारा अधिष्ठान, जिस अधिष्ठान में आरोप किया गया था विचार द्वारा ये तीनों पदार्थ ब्रह्म में आरोपित हैं, ये निश्चय होते ही तीनों ब्रह्म सत्ता तत्व अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव, ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त इन तीनों वस्तुओं की सत्ता का अभाव हो जाता है। तब फिर क्या हुआ, वही जो अवशेष सत्ता है वह विश्वरूप है, अनंत है, वही आत्मा है, वह कर्ता है, अभोक्ता है। त्रयम, त्रयम का अर्थ कर दिया, भोक्तृ भोग भोग्य रूपम है ना, भोग भोग्य और भोग प्रयुक्त तीनों, मायात्मकत्वात् इन तीनों की आत्मा क्या है, माया, माया से ये प्रतीत हुए हैं इसलिए उनकी आत्मा वही माया है, और उसकी आत्मा मर गई तो फिर वो जिंदे रहेंगे, माया बाधित मिथ्या हो गए तो कैसे सत्य होंगे, आत्मा ही मिथ्या है तब फिर और कोई सत्य होंगे ये है? मायात्मकत्वात् अधिष्ठानभूत ब्रह्म व्यतिरेकेण नास्ति, सबका अधिष्ठान रूप ब्रह्म के अतिरिक्त इनके स्वतंत्र कोई स्वरूप नहीं है, किंतु ब्रह्मे वेति, किंतु ब्रह्म एव एति, ब्रह्म ही हो जाते हैं। यदा विन्दते, इस तरह निश्चय कर लेता है जब, यदा विन्दते, विन्दते माने ब्रह्म के रूप में ही ब्रह्माभिन्नत्वेन इनका ग्रहण न करके, ब्रह्म भिन्नत्वेन ग्रहण न करके ब्रह्माभिन्नत्वेन ग्रहण करता है, यदा विन्दते तदा निवृत्त निखिल विकल्प, तो सारे विकल्पों से वह निवृत्त हो गया। विकल्प क्या था, भोक्तृ रूप विकल्प, भोग्य रूप विकल्प और भोग रूप विकल्प, प्रेरक रूप विकल्प, सारे विकल्प से वो रहित हो गया। वो निवृत्त निखिल विकल्प पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म भाग कर्तृत्वादि सकल संसार धर्म वर्जितो वीत शोक, संसार धर्म से वर्जित हो गया तो स्वतः वीत शोक, क्योंकि शोक का कारण संसार धर्म है ना, शोक मोह का कारण संसार धर्म है, संसार ब्रह्म से अतिरिक्त संसार को जब अलग सिद्ध नहीं होगा तो फिर शोक भी खत्म हो गया, वो तब वो विगत शोक वीत शोक कृतकृत्व अवतिष्ठता इत्यर्थ, तब वो कृतकृत्य हो जाता है, उसको अब कोई करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि संसार धर्म रहेगा तब ना करना बाकी रहेगा। अथवा ज्ञा अज्ञा अजौ, ज्ञानी ईश्वर, ज्ञा माने ईश्वर, अज्ञा माने जीव, ज्ञा अज्ञा और अजा माने माया, ये ज्ञा ज्ञा जात्मा, एक एक अक्षर में एक एक वाक्य रख दिया है, ज्ञा ज्ञा जात्मक जीवेश्वर प्रकृति रूप त्रय, जीव ईश्वर और प्रकृति रूप तीनों, ज्ञा ईश्वर रूप, अज्ञा जीव रूप, अजा प्रकृति रूप, त्रयम् ब्रह्म यदा विन्दते, तीनों को ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता भावत्तेन विन्दते, ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त इनकी सत्ता नहीं है इसलिए ये तीनों ब्रह्म सत्ता वाले हैं, ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्ता माने ब्रह्म ही है, इस रूप में विन्दते लवते तदा मुच्यत इति, उसी समय वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मम इति मकारांतम, ब्रह्म तो ब्रह्मम, ये मकारांत क्यों प्रयोग किया है भाई, भाषा के दृष्टि से तो ये अशुद्ध है, पाणिनीय व्याकरण के दृष्टि से तो ब्रह्मम ये अशुद्ध है महाराज, ब्रह्मम इति मकारांतम, ब्रह्ममेतु माम मधुमेतु माम इतिवत। वेद में ब्रह्मम हेतु मधुमेतु इत्यादि की तरह ये छांदसम, ये प्रयोग वैदिक है इसलिए लौकिक व्याकरण अनुशासित नहीं कर सकता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।